वाक्य के भेद। विभिन्न आधारों पर वाक्य के अनेक भेद होते हैं। पहला, क्रिया के अनुसार वाक्य के दो भेद हैं। पहला, क्रियामुक्त और क्रियाहीन। सामान्यतः वाक्य क्रिया युक्त ही होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्रिया का प्रयोग नहीं भी होता है। क, अनेक भाषाएं ऐसी हैं जिनमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, जैसे संस्कृत, रूसी, बंगला आदि। हिंदी, अंग्रेजी आदि में सहायक क्रिया के बिना काम नहीं चलता, जैसे संस्कृत में इदं मम पुस्तकम्, यह मेरी पुस्तक है। रूसी में एता मया क्निगा, यह मेरी पुस्तक है। बंगला में ऐ अमारा बाइक, यह मेरी पुस्तक है। इन तीनों उदाहरणों में सहायक क्रिया नहीं है और उसका अभाव नहीं खटकता। इसके प्रतिकूल हिंदी या अंग्रेजी में बिना है या इस का प्रयोग किए वाक्य अधूरा लगता है। यह मेरी पुस्तक है या दिस माई बुक खटक जाता है। यह मेरी पुस्तक है या दिस इज माई बुक कहने पर ही आकांक्षा के पूर्ण निवृत्ति होती है। ख, बहुत सारे मुहावरे ऐसे हैं जिनमें क्रिया का प्रयोग नहीं पाया जाता, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, हाथ कंगन को आरसी क्या, आम का आम गुठली का दाम, चोर की दाढ़ी में तिनका आदि। ग, एक पद वाले वाक्यों में भी क्रिया का प्रयोग नहीं पाया जाता, जैसे सांप, भूकंप, आग, हत्या। वस्तुतः ऐसे वाक्य घबराहट, भय आदि की मनोस्थिति में बोले जाते हैं, जिसमें वाक्य पूरा करने की भावना नहीं रहती और न पूरा करने का समय रहता है। किसी प्रकार परिस्थिति की गंभीरता बताकर संभावित खतरे सचेत करना ही ऐसे वाक्यों का प्रयोजन होता है, और वह प्रयोजन बिना क्रिया के ही सिद्ध हो जाता है। घ, प्रश्न वाक्य के उत्तर में क्रिया को की अपेक्षा नहीं होती, जैसे प्रश्न, तुम कहाँ जा रहे हो? उत्तर, दिल्ली। यहाँ दिल्ली के बाद क्रिया के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने से ही आकांक्षा की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। इस प्रसंग में कर्ता का भी ध्यान देना प्रासंगिक नहीं होगा। व्याकरणिक कर्ता और तार्किक कर्ता में अंतर होता है। तार्किक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वह सदा क्रिया का निष्पादक होता है और कर्तरी प्रथमा के अनुसार उसमें प्रथमा का ही विधान है, किंतु व्याकरण सदा तर्क का अनुगामी नहीं होता, इसलिए कर्तृत्व का बोध अनेक प्रकार से कराया जाता है। कर्ता कारक यानी बालक करता है, करण कारक बालक से किया जाता है, संप्रदान कारक मुझे करना है, संबंध कारक बालक की कृति। उपर्युक्त उदाहरणों में कर्ता, करण, संप्रदान और संबंध, इन चारों की सहायता से कर्तृत्व का बोध कराया गया है। क्रिया के प्रयोग और अनुप्रयोग के आधार पर वाक्य के दो भेद दिखाए गए। क्रिया के प्रयोग को लेकर भी तीन भेद होते हैं, जो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के नाम से प्रसिद्ध है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, जैसे पुस्तक मुझसे पढ़ी जाती है। भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की, बल्कि क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है, जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। दूसरा, रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल, दूसरा मिश्र और तीसरा संयुक्त। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, अर्थात एक संज्ञा और एक क्रिया होती है, जैसे लड़का पढ़ता है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य रहता है, किंतु आश्रित उपवाक एक या अनेक हो सकते हैं, जैसे जो विद्वान होता है उसका सर्वत्र आदर होता है। संयुक्त वाक्य में अनेक प्रधान उपवाक्य होते हैं, जिसके साथ अनेक आश्रित उपवाक्य भी रहते हैं, जैसे जिस दिन भगवान ने आलू का निर्माण किया होगा, उस दिन उसे यह गुमान भी नहीं रहा हुआ होगा कि एक आलू का इतने रूपों में प्रयोग हो सकता है। तीसरा, अर्थ के अनुसार वाक्य के आठ भेद माने जाते हैं। विधि वाक्य, या जैसे वह पढ़ता है। निषेध वाक्य, वह नहीं पढ़ता है। प्रश्न वाक्य, वह पढ़ता है। अनुज्ञा वाक्य, तुम पढ़ो। इच्छार्थक वाक्य, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें। संदेहार्थक वाक्य, वह पढ़ता होगा। संकेतार्थक वाक्य, यदि वह पढ़ता तो बहुत अच्छा करता। विस्मयादि बोधक, अरे तुम पढ़ रहे हो। चौथा, शैली के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला शिथिल, दूसरा समीकृत और तीसरा आवर्तक। इन तीनों भेदों के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। कभी कभी इनमें परस्पर सांकर्य भी देखा जाता है, किंतु स्थूल दृष्टि से यह भेद व्यवहारिक प्रयोग के। शिथिल वाक्य में वक्ता या लेखक एक के बाद दूसरी बात उन्मुक्त भाव से कला या अलंकरण का सहारा दिए बिना कहता चलता है। जैसे अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। महाराज लगभग बूढ़े हो चले किंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन महाराज ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर गुरुदेव से संतान के लिए प्रार्थना की। लेखक के मन में जिस क्रम में विचार आए उसी क्रम में ये वक्ता वाक्य बनते गए और न कोई कला है न अलंकरण। समीकृत वाक्य संगीत और संतुलन ही नैसर्गिक मानवीय इच्छा की पूर्ति करता है। जैसे राजा जैसा राजा वैसी प्रजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो धर्मस्तो जय। समीकृत वाक्य वैश्रम मूलक भी होता है। जैसे एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली। समीकृत वाक्यों के दो व्यवहारिक लाभ हैं। एक तो वाक्यों की रचना एक पद्धति पर होने से उन्हें याद रखने में सुगमता होती है और दूसरे उनमें मन में एक प्रकार का आनंददायक विस्मय होता है। उदाहरण चाहे विद्वान निंदा करे चाहे स्तुति, चाहे मृत्यु आज हो जाए चाहे सैकड़ों साल बाद, चाहे लक्ष्मी आए या अन्यत्र चली जाए, किंतु जो धुन के पक्के हैं वे कर्तव्य से कभी नहीं डिगते। आवर्तक वाक्य में चरम सीमा अंत में आती है। श्रोता या पाठक उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करता रहता है और तब उसके सामने वह बात आती है जो वक्ता या लेखक उसे बताना चाहता है। इस शैली के वाक्य श्रोताओं वक्ताओं या नेताओं के काम के अधिक होते हैं। जैसे यदि हम चाहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, यदि हम चाहते हैं कि हमारी सीमा की ओर देखने की हिम्मत शत्रु को न हो, यदि हम चाहते हैं कि भारत शिक्षा कृषि और उद्योग के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करता रहे, तो हमें आपसी भेदभाव भुलाकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाना होगा। शैली की दृष्टि से वाक्य का विचार वस्तुतः भाषा विज्ञान के क्षेत्र में नहीं पड़ता, उसका विचार काव्यशास्त्र में होता है। किंतु वाक्य के भेदों का विचार करते समय उसकी भी चर्चा आवश्यक थी, न्यायिक विस्तार अनुपेक्षित। वाक्य का प्रयोग करते समय एक साथ चिंतन, उपयुक्त पद का चयन, व्याकरणिक गठन और उच्चारण से काम लेना पड़ता है। यह प्रक्रिया बड़ी ही जटिल है। उच्चारण के पहले चिंतन आवश्यक है, किंतु चिंतन की गति और उच्चारण की गति को इतना संतुलित होना चाहिए कि उसमें कोई पिछड़ न जाए। जहाँ चिंतन पिछड़ जाता है वहाँ वक्ता रुक रुक कर बोलने को बाध्य हो जाता है, जिससे भाषण का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। और यदि चिंतन की गति तीव्र हो गई तो उसके अनुपात में उच्चारण की गति तीव्र होने से उच्चारण और स्पष्ट और प्रभावहीन हो जाता है। वाक्य का संतुलित प्रयोग शिक्षा और अभ्यास से ही संभव है। चूँकि वाक्य भाषा की प्रमुख इकाई है, इसलिए ध्यान भी उस पर सबसे अधिक देना उचित है।